this night is dedicated in the name of our last Imam, Hujjat ibn al-Hasan al-Askari, who he was. In this sense, we are one of the most blessed nations of humanity, that we have this religion, and we are living under the age of this Imam, who is titled as Warisul Anbiya. So all the messages of prophets, all of their guidance, and inshallah, their achievements will be summarized in the achievement which will be done, and inshallah, we will see that after his reappearance. So once again, to pray Allah subhanahu wa ta'ala for his earliest reappearance, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. And you know that whenever Allah blessed us with something, then there is a question against that blessing. So if you have parents as his blessing, then you have a question. How you dealt with them? If you have Holy Quran, guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a question. Then how you got guidance from Holy Quran, and you have this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And in a sense, this is the greatest of his blessings, or the greatest blessings. Because it is not limited to this world. It is going to give you eternity in this world and the hereafter. And as I told you, he is taking inheritance from all the prophets. So whenever you do a ziyarah for Imam al-Asim, you start from Hazrat Adam alayhi salam, and you go up to the 11th Imam, and then you say, you are the successor of all of them. And you have the flag and honor of all of them in his hand. But alhamdulillah, brother, Rabbil Alameen, we are blessed with this Imam, and we know this. We have a responsibility. Now, what type of responsibility is this, and how to fulfill that responsibility? And I'm going to take 10 minutes of more of your time, around that 10 minutes, to explain that. Now, since I became a student of religious studies, it was way back in 1984, and one of the first topics which got my attention, my interest, is the reappearance of Imam. What are the signs? Is it close or is it still far? So I imagine it was since 86 that I was attracted to this topic. I started learning about that. And one of the earliest books which I learned and read, it was Aslu Zuhur of Sheikh Ali al-Quran. And the book is still here. You go through that book. It was too early that time. And since that time, I was just looking how we are moving. Are we going closer to the reappearance of our Imam according to the signs given in the traditions, or we are deviating from that process? And I can assure you, in the last 30 years, I never saw a day when we deviated or one say that we have rolled back our process of going towards Imam. Always we step forward, we came closer, and this is the world which we have now. It's completely different from what we had 40 years back, what we had 30 years back. If those of my friends who are that type of age, they remember that we don't have that much of mentioning of our Imam in our majalis 40 years back. Same dua, Allahumma kulli waliyyaka al-Hujjat ibn al-Hasan. Now we recite everywhere, alhamdulillah, Rabbil Alameen, but not that much 40 years back. I remember, I was living in Karachi in Shia, Kemnidi, And we were very close to Masjid. I remember what we were doing at that time. How much we were aware of his reappearance, or how much we were praying for his reappearance. I know that. These du'as, du'a al-nudba, and this same du'a asking for his reappearance were not that much changed. Alhamdulillah. Now, almost everywhere we have this du'a, almost everywhere we have people talking about that. And during that 30, 40 years, one of the major achievements, I think, which we follower of Ahlul Bayt alayhi salam achieved, that no one can ignore us in this world now. They know we have power. They know we have strength. Look at us. Look at us 40 years back and now. Just compare. You have 40 of Imam Hussain alayhi salam. And I don't know if anyone could guess how many people were there every year. No one will say it is less than 25 or 30 million. They normally say it is more than 25 million. Now, could you imagine that many people would come around Karbala 30 years back? It was never been in our mind that this thing we are going to see in our world. It happened. And I can assure you that everywhere in this world, people of religion are retreating except one community, which is Shia. It looks that it is now their time of reliving and their life, they are getting strength to do a part of it. Alhamdulillah. Had you been 100 years back, it was very difficult for people like us to say that be ready for your Imam. But it is now very easy for us. Everybody is talking about him. And look at those countries. Alhamdulillah. Look at Iraq, Iran, Lebanon, Bahrain, and in all countries which we are in minorities, in Pakistan, Afghanistan, even India, cannot you see the change? Cannot you see the enthusiasm in public about Imam? So I am very much hopeful in the light of whatever we learn from our teachers, that it is going to be very close, very, very close now. Now, as we are, alhamdulillah, a follower of our Imam, we will always wish to have him as early as possible in our life, but we are commanded to wait, and we are commanded to be ready for him, whatever time it takes. So I am very much hopeful that, inshallah, if I could live a normal life, inshallah, people like me will see him, inshallah. But we are his followers. He is the master, and we are his followers. So how long it takes, it doesn't matter. Our responsibility is to get ready for him. Now, how you can be ready for him? What you need to change in yourself? And more important, how you guess, are you ready or not? And this realization of your preparation, I think, is the most important point. Now, I'm not going to tell you that if you recite, for example, that surah every day, you will be ready. It's not a magic. This is not a magical spell that you recite for 10 minutes, for example, and then you will be ready. No, it's not going to have this very easy. It has to be done, and I know it's a very difficult task, but you know, we waited for him for around 1100 years. And I will ask you a very simple question, and that question always helped me in understanding what type of preparation we need. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
A bit difficult to imagine, but please help me and follow this path. If someone tells you that Imam will have an army, you know that. And you know that it will not be a very small army. It will be a very big army. Thousands of people will be there, if not hundreds of thousands. But if I tell you that I know, and I don't, I never felt that, but just assumption. If I tell you that someone in the army of Imam will not be a very good person. If I tell you that someone in the army of Imam, na'udhu billah, he will tell a lie, he will miss his prayer, he will deceive people, are you going to accept that from me? You're not going to accept it. Why? Because you will say that he waited for 1100 years, not for a deceiver, not for a liar, not for someone who never performs his duties. His army will be the group of most purified people. And that is what we waited for 1100 years. We never waited for preparation in the personality of our Imam alayhi salam. It was always perfect. What we waited for? We waited for his ansar, for those who are going to help him. Not the enemies actually, the friends, the followers. So what type of follower are we waiting for? Are we waiting for a lion of Zulaka? Or were we waiting for someone who will deceive people? Or were we waiting for someone now who will never perform his duties? I know you're not going to accept it. And you know that this army of people, which Imam will have, and that army is going to help him, these guys will be the most purified people on earth. I'm going to ask one question. What is your assumption about yourself? Will I am not going to put on you, I'm going to put myself on the question. Will I be in that army or not? Honestly speaking. So in this night, and one of the greatest nights of the year, I can sit alone, ask myself a question. And I'm truly wanting me to do this in my life every night. Especially in this night. Okay, I'm a Maulvi. People think that I am a student of religion. I've done that much traveling. I've spoken that many places, that many speeches, always on the net. But I ask myself one question. Am I ready or will I be accepted in his army or not? Is my character enough for that army? Is my qualification enough for that army? And I'm requesting you to do the same question with yourself. Have you qualified for that or not? That is the bottom line of every question. Are you qualified enough or not? And if by the honest of your decisions or verdicts you say that yes, I am qualified enough, I will congratulate you. You achieve what you have to achieve. But if you think, or if I think that, okay, I am very close to be qualified, but I have some things to resolve before this reappears, then this is the right mind. Sit with yourself, ask yourself, am I qualified or not? And if you find that, okay, close to be qualified, but I have 2-3 problems that need to be solved, then my dear friend, my dear brother, and my dear sisters, what are you waiting for? You are praying, you are asking Allah to send him as early as possible. You have conditions that don't say in, for example, 2 months, 3 months, no. Tell Allah this time, right now, not tomorrow, tonight, and right now. What are you waiting for? Resolve these problems. The first thing, judge yourself. Ask yourself, am I qualified or not? And if you see some problems, there are some problems, which you think that can be a problem in my entrance to that army, then I would ask you, don't wait for anything. Your duty is to solve these issues. So if I think that without having good namaz, without having good prayer, I can't be qualified for his army, then improve your prayers. And if I think that without reciting Quran, no one will be allowed in his army, because his army will be army of followers of Quran. Then you recite Quran. I don't understand Quran. And if I think that my parents are, na'uzubillah ta'ala, not happy with me, and we have traditions from Prophet, from we have traditions from Aimah, that they never accepted anyone whose parents was not good with his parents, then what are you waiting for? Change your life. This is the task which millions of most pious people waited for. A reward. We have a tradition from Prophet. He was sitting with his companions and he said, my salam to my brothers. Then he said, my salam to my brothers. Companion thought that this is a salam from Prophet to them. So they said, wa alaikum salam. The Holy Prophet said, my salam to my brothers. So they realized that it is not for them. They kept silent. Then again Prophet said, my salam to my brothers. And he said, Holy Prophet, whom these brothers are? Are not we those brothers? Prophet said, no. He said, how is it possible? We fought brothers. We fought for help. We were with you in contact. We did everything for you. And we are not your brothers. So who are those blessed people who are your brothers? He said, there will be a time. It will be centuries from my time. There will be people who will never see me, never had any meeting with me. They just learn about me from papers. He used the Arabic word of blacks and white, which represent writings. He said they believed in me just because of blacks and whites, the writing. And then because of that belief, they will help my son, who will come in their time. What will be the reward for those people who were going to help Prophet's son at that time? He said, they will be counted as my brothers. Now, can you imagine a title like this? Will that title be given very cheaply? No, brother. It's a title millions of people waited for. So it is going to take a cost from us. And the cost will be a pious life. I can't say perfect life, but close to perfect. So this is the task, this is the reward, and this is the challenge. And you are in one of the most challenging environment of this humanity. Because we know we have tradition that at the time of reappearance, to keep your iman safe will be tough, more tough than keeping fire in your hand for a whole day. If you keep fire in your hand for a whole day, that will be easier than to keep your iman perfect at that time. So this is the reward and this is the challenge of where you are. Those who want to achieve that reward, they have to have courage, they have to have their willpower, and they have to be ready for sacrifices. And we know that all the guidance, all the blessing, all the help of all the Aimah and mother of Aimah will be with them if they just decide to come in this part. So inshallah, be blessed. Most of you, or a group of you, are young enough. I am not sure about myself. How long a person like me will live. But looking at youth, looking at those who are young in age and those energetic faces. I just imagine if one of us could be fortunate enough to be in that army, that would be a blessing for us. And I don't know, you have children here. Once I was in Karachi, there was a group of children, around 200, 300 people were there, and we did a camp for 1 month. After that month, all the teachers were tired, and they were thinking, what we got after 1 month? I said, if just imagine, if one of those children could become a companion of our imam, isn't it better for your heart? Well, inshallah, you are going to see this. Inshallah, Allah will bless us with His guidance, with His reappearance. Wherever you are, you will be allowed to join Him. Just be ready and be and try to change yourself as much as possible to the right path. Fight with your, I can't say, mistakes, but inshallah, whatever you felt that this is a deficiency in myself, fight it. And then, inshallah, with improvement, Allah will bless us to have His guidance. And inshallah, finally, our life should be spent in His path. And the honor of being His companion, inshallah, to achieve all these objectives, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. चैनल लगाने वाला हूँ, चैनल चेंज करो,
इसका नंबर 5 है, वाला भी 5 का ही 5 ही है, सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين मैंने इसमें बोला उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं, सबको समझ आ रही होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसी में एडिशन करते हुए थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ समरी के तौर पर। जो आखिरी 30-40 साल थी बहुत अजीब साल, बहुत अजीब मुद्दत थी। एलिवेट के चाहने वालों ने आखिरी 30-40 साल में जो कुछ हासिल किया, इसके लिए कई 100 साल तैयारी की, बहुत सारी तैयारी हुई थी। और मिसाल के तौर पर बस स्टार्ट करने की खातिर कह रहा हूं कि आज मिसाल के तौर पर आप सब लोग तकरीबन आयतुल्लाह और उस्मा बहजत का नाम जानते हो, तकरीबन सभी जानते हो, अच्छा सब जानते हो, बहुत बड़े आरिफ थे, सब जानते हैं। वो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में नहीं काम किए, मकामात तक पहुंचे। और मैं एक जगह उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहा था, तो उनके किसी दोस्त ने जो उनके साथ नजफ में होता था, बहुत पुराना, उसने लिखा कि जब आगा की उम्र 18 साल थी तो उनको इमाम हुसैन से 20 तोहफे मिल चुके थे। 18 साल की उम्र, और जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनकी उम्र 80 साल से ऊपर। अजीब बात यह है कि आखिरी चंद सालों में लोगों ने आगा बहजत को पहचाना। और मुझे याद है 1986-87 में, 86-87, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे, 30 साल पहले वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उनकी जोर की नमाज में 25-30 आदमी होते थे। 25-30 आदमी, कब की बात है, 30 साल पहले की बात है। और वो कब से आरिफ थे, जब उनकी उम्र 18 साल की तब भी आ रही थी, लोग नहीं पहचानते थे, नहीं मालूम क्या हुआ, अचानक इन लोगों ने अपने आप को खो दिया, इन लोगों ने अपने आप को अश्कार कर दिया। अच्छा, ये जो आयतुल्लाह उस्मान बेहतर थे, ये जिस चेन के अंदर आए थे वो चेन कई सौ साल से चल रही थी, उनके टीचर्स को भी लोग नहीं जानते थे, वो सब सब गुमनाम रहते थे, अपने नामों को छुपा के रहते थे, काम को नहीं बताते थे। ये कोई दौर ऐसा आया जिसमें इन लोगों ने अपने आप को खो दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो जब मैं इस चेंज को देखता हूं कि भाई 200 साल से ये लोग अपने आप को छुपा रहे थे, बताते ही नहीं थे किसी को हम क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं, अचानक अपने आप को बता दिए। और मैंने खुद आयतुल्लाह उस्मान बेहतर का दौर खुद के अंदर देखा है, जब उनके पीछे 25 लोग नमाज पढ़ते थे, तो अभी क्यों खोल दिया? तो मुझे समझ में आता है इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। और जो अपनी आंखों से इस ट्रैवलिंग के दौरान देख रहा हूँ दुनिया भर के अंदर, वो अजीब गरीब है, पहले तो ऐसा सोचा नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में कहा, सारे दीन और सारे मजहब तकरीबन पीछे जा रहे हैं, सबकी शिकस्त का दौर है, सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट है आगे जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट आगे जा रहा है, वो आप अहले बैत इस्लाम के मानने वाले। ये बहुत एनकरेजिंग टाइम है हमारे पास, बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास, सिर्फ हमें एक बात देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा अभी कि भाई जब इनाम बड़ा होता है तो चैलेंज छोटा नहीं होता है। आपका बच्चा मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास वन में है, क्लास टू में, क्लास थ्री में है, लेकिन जब वो मास्टर्स कर रहा होता है, पीएचडी कर रहा होता है, बात एक जैसी नहीं होती। जब रिवॉर्ड बड़ा होगा तो चैलेंज भी बड़ा होगा, आप बड़े चैलेंज के सामने। अब मैं यहां पे एक और बात कहता हूं आपसे, अब वो थोड़ी खतरनाक बात है और इसका मैं सहारा लूंगा कुछ रिवायत के जरिए से इस बात को बताने के लिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की रात बहुत अहम बात है और मुझे अमाल के बारे में भी चंद जुमले कहने हैं और एक दो बातों के बारे में और भी कहना है, और इतनी ढेर सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं, और जाहिर है कि मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लूं, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूं। जब इमाम तशरीफ आवरी होगी तो खाने काबा के बराबर में खड़े होकर वो ऐलान करेंगे और कुछ लोग इमाम का साथ देंगे। जो मैंने कहा था पहले कि 30 साल पहले हम देखते थे निशानियां कौन कौन सी है ना, तो कुछ पीसेस मिस थे, अभी कोई बड़ा पीस मिस नहीं, सब पीसेस अपनी जगह पे लग गए। बिल्कुल साफ साफ बात करूं, मतलब हम मैंने जब 87-86 में पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था जब इमाम तशरीफ लाएंगे ना तो पहला ग्रुप जो इमाम को ज्वाइन करेगा बड़ा ग्रुप कहां से आएगा, यमन से। 30 इयर्स बैक मैं यमन देखता था, मैं कहा भाई यहां से कौन आएगा, यहां तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने बाज़ोकात ऐसा करता था, मैं किसी दोस्त से कहता था यार यमन जाके देखो तो सही, शायद कोई हो, हमें नहीं बताओ, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ से कौन सा ग्रुप आएगा इमाम का साथ देने के लिए, अभी नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है? अभी तो अमेरिका को भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि भाई जहां पर आ गए लोग इमाम का नाम ले रहे, इमाम का साथ देने के लिए आए हुए हैं। अब ये अलहदा स्टोरी है कि भाई ये तो आए हुए हैं साथ देने के लिए, बाकी दुनिया क्यों मिडिल ईस्ट आएगी, इसको भी आपको कभी सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो चलो साथ देने के लिए आए, तो बाकी दुनिया क्यों आई है। और ये बहुत पुरानी स्टोरी है कि मिसाल के तौर पर एक खास कम्युनिटी जो मदीने के रहने वाले नहीं थे, वो नबी के आने से पहले मदीने में आकर रहने लगे और बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा दुश्मनी दिखाई। इंसान को बहुत होशियार रहना पड़ता है कि भाई ये हो क्या रहा है यहां पर। और मैं सिर्फ इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आप अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचिए। हम लोग थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं, मान लीजिए 100-200 साल कोई बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत लंबी है। कुछ दुनिया में तब्दीलियां 150-200 साल पहले से आ रही हैं, जो अब तक पहुंच कर हमें लग रहा है इमाम की तरफ जा रही है। आप अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, 150 साल पहले आपकी कम्युनिटी में चेंज आ जाए Bu Kuday'ı çeyizler. Ya Kuday çatlar ya. Ben çizim tura var karayın çünkü var sen çizim zannı hakim. Durup beri ya Muhammed ve Alim Allah.
Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, माइक पे दोबारा आते हैं एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले
मोहम्मद सल्लल्लाहु
ये प्रोसेस है जो चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज क्या कि 30 साल पहले दिल वगैरह हिल तो नहीं रहेगा एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले
मोहम्मद
علي وأولاد علي مع وزير بلد صلوات
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه پنج تن خام مع وزير بلد صلوات
اللهم صل على
سلام دیئے امام زمانہ معواز بلند صلوات
اللہم صلی اللہ
علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد درود بھی دیگا محمد وعلی محمد
اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد
कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या बात रेजिडेंट हो गया लगा एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले
मोहम्मद
मैं आपसे कह रहा था कि भाई ये टाइम है जो बहुत बड़ी तब्दीली का टाइम है बहुत ज्यादा चेंज आया है और इस चेंज के होते हुए हमें और आपको हमेशा अपने रोल को देखना होता है हमारा कैरेक्टर क्या है तो आपको बोला कि 30 साल पहले कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं नजर आती थी अभी मैं 30 साल बाद देखता हूं आप इधर देखिए
पर शहंशाह कायनात इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलावत
और मिसिंग पार्ट नजर नहीं आते अब लग रहा है स्टेज पूरा तैयार हो गया अब सिर्फ आपको और मुझे देखना पड़ रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग तैयार हो गए मैं तैयार हुआ हूं या नहीं हुआ क्वेश्चन यहां पर अच्छा फर्ज करो जो लोग हम लोग अमनों से लोग पूछते हैं मौला मौला की जो आने की निशानियां हैं वो पूरी हो गई हैं तो मैं उनसे कहता हूं चलो फर्ज करो सारी पूरी हो गई आज अभी इमाम तशरीफ ले आए अगर मैं तैयार नहीं था तो फायदा होगा या नहीं होगा मुझे कोई फायदा नहीं होगा अच्छा अगर मैं तैयार था और इमाम नहीं आए नाउजुबिल्लाह देर से आए मैं मर गया और इमाम तशरीफ लाए तो मुझे नुकसान होगा कोई नहीं कोई नुकसान नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आ जाएंगे या एक साल बाद आएंगे इंपॉर्टेंट ये मैं कब तैयार हूंगा ये इंपॉर्टेंट है आप अपनी तैयारी पकड़ो और दूसरी बात ये कि मैंने कहने की पहले भी कोशिश की दोबारा अर्ज कर रहा हूं ये कि भाई हम लोग मालिक नहीं है हम लोग नौकर हैं मालिक कह देता है घर तैयार करो मैं आऊंगा तो मालिक का काम है जब आना चाहे आता है गुलाम का काम क्या है नौकर का काम है तैयारी करें वो मालिक हैं उन्होंने हमसे कहा हम आएंगे तुम तैयारी करो भाई तुम तैयारी करो खत्म हो गया मामला तुमने सीखा काम वो आ जाएगा कल है मालिक है वो हाँ दिल की ख्वाहिश क्या है दिल की ख्वाहिश है कि मौला आज तशरीफ है अभी तशरीफ है अच्छा आप तैयारी क्या करें ये मसला है
भाई हम लोग जब कहते हैं तैयारी करो तो मतलब कोई समझता है कि मौलाना मुझसे कह रहे हैं कि सुबह को एक दुआ पढ़ लिया करो 5 मिनट के लिए मामला। अगर ये 5 मिनट पे मामला खत्म होता ना तो 1100 साल वेट करने की जरूरत नहीं थी। 5 मिनट देने वाले पहले भी बहुत आए। क्या चाहिए? अब ईद की रात है तो एक थोड़ा सा मजाक का हिस्सा भी डाल दू। भाई मेरा थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है, सही है? तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे कहा कि यार ये चंद किलो मेरा बढ़ा हुआ है, इसको कम करना है, तो कोई सादा सा नुस्खा बता। क्या मतलब मौलाना सादा सा नुस्खा नहीं है, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा चंद किलो कम करने के लिए लाइफ स्टाइल चेंज करो पूरा। क्या लगा नहीं करोगे ना तो ये कभी खत्म नहीं होगा, सही है? अब मैं जुमला पूछता हूं, इमाम का साथ देने के लिए 5 मिनट है, चंद किलो वेट कम करने के लिए तो लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है और इमाम का साथ देने के लिए। अब एक आदमी कह रहा है मेरा जो गुनाह का दिन चाहता है मैं करूंगा, मैं ये गलत काम दिन चाहता है करूंगा, ये गलत काम मुझे पसंद है मैं करूंगा, ये मेरे अब्बा ने कहा था, ये मैंने कहा था, ये मेरे दोस्त ने कहा था, ये मेरी वाइफ ने कहा था, सब करूंगा और मैं इमाम का भी साथ दूंगा, तो बेटा कैसे साथ होगा? अगर किसी ने वाकई इमाम का साथ देना है उसको डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप, उसको अपना लाइफ स्टाइल इमाम के लिए ढालना पड़ेगा। तो क्या करें? एक जुमला आप सर्च करूंगा, मुफीद और मुख्तसर। अगर आपने अमल कर लिया तो ये समझ लीजिए आपको और मेरा काम आसान हो गया। और मुझे अभी तक कोई बंदा नहीं मिला, इतने मैंने दोस्तों के सामने ये बातें कही हैं, जो मुझसे कहे कि मौलाना ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं ना जिस पर अमल करने के लिए मार्स पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे अमल नहीं होती। लेकिन ये जो मैं अब आपसे कह रहा हूं ना, किसी ने मुझसे नहीं कहा प्रैक्टिकल नहीं है, सबने कहा बात प्रैक्टिकल है। और किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अमल किया हमें फायदा नहीं हुआ, नहीं वो कहते फायदा नहीं हुआ। तो वो प्रैक्टिकल और यूजफुल बात क्या है वो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप में से 15-20% लोग अमल करेंगे, ये वो एवरेज है जो जहां हम जाते हैं इतना मिल जाता है, 15-20% लोग मिल जाते हैं काम करने वाले। तो आप में से 15-20% लोग ऐसे होंगे जो बात पे अमल करेंगे, बाकी लोग क्या होंगे? बाकी को अल्लाह सवाब देगा इंशाअल्लाह। तो आप कोशिश करके उस 20% में आ जाना। बाकी अल्लाह मालिक है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंशाल्लाह यहाँ उससे ज्यादा होगा इंशाल्लाह। जुमला क्या है? थोड़ा सा एक कहानी है इसके पीछे, थोड़ा सा वक्त देखो कहानी भी सुना देता हूँ। चल दे रही एक जगह गया, वहां पर मजलिस पढ़ी, मैंने मजलिस पढ़ी, उसके बाद वहां पर दस्तखान था तबरुक के लिए नजर नियाज, मैं उसको बैठा हुआ था। एक आदमी मेरे पास आया और उसने आकर मुझसे कहा कि मौलाना मुझे बहुत जल्दी में जाना है, बहुत जल्दी आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो जल्दी से जवाब दो, मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी है रात की। मैंने कहा बताओ। कितना रहम किया तुमने, अल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अभी डिफरेंस फील हुआ? ये हम लोगों के साथ जिंदगी में होता है, हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है, हमें पता नहीं होता कि क्या परेशान कर। अब मैं एक बात कहूंगा, हमारा खुदा से कनेक्शन नहीं होना ये वो नॉनसेंस है जिसका हमें पता भी नहीं होता कि कमी क्या है। लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? लोग समझ रहे हैं पैसा आएगा तो सब सही हो जाएगा, जब बच्चे बड़े होंगे सब सही हो जाएगा, जब ये मिल गया तो नहीं नहीं होगा सही, किससे सही होगा? तो खुदा ने कनेक्शन पे खल्क किया, कनेक्शन क्रिएट किया, इसके अलावा सही नहीं होगा, ये ऐसे होगा। लेकिन जब कनेक्शन मिलता है तो इंसान को पता चलता है ओ मैं क्या मिस कर रहा था, ये होता है इंसान अपना कनेक्शन बढ़ाओ। एक ही रूटीन के अंदर कनेक्शन है, 10 मिनट 5 मिनट खुदा से बात करो। मेन पॉइंट से पहले मेन पॉइंट ले आया, क्या क्या करो? चंद मिनट अल्लाह से अपनी जबान में गुफ्तगू करो, बात करो। भाई जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं या नहीं करता, तो खुदा से बात क्यों नहीं करता? खुदा तो बात करना पसंद करता है। खुद कहता है मुझे पुकारो, खुद ओनी अस्तजिब लो, मुझे पुकारो। फरमाता है नबी इन्हों से कहते हैं इजा सअलका इबादी अन्नी इन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इजा दान। नबी को बोलते हैं जब भी मेरा बंदा मेरे बारे में कुछ पूछे तो इन्हें बोलते हैं मैं करीब हूं, मैं जवाब दूंगा जब भी कोई मुझे पुकारे। अच्छा जब मैं आपसे कहूँ ना मेरे जैसा आदमी कोई क्या भाई मैं हमेशा 4 बजे आऊंगा, तो इस बात में मुमकिन है कि 4 बजे ना आऊं, 4:10 पे आऊं, लेकिन अगर खुदा कहता है ये करूंगा तो कोई रास्ता नहीं, फिर वो यही करेगा। और उसने कहा जब भी कोई मुझे पुकारेगा मैं जवाब दूंगा, इसका मतलब नो एक्सेप्शन, जवाब देगा आप पुकारो। तो साइड में एक पॉइंट था बीच में आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर रोज खुदा से डायलॉग करो, गुफ्तगू करो। अब डायलॉग कहते हैं दो तरफ को, शुरू में शायद डायलॉग नहीं होगा, बाद में डायलॉग शुरू हो जाए, बाद में दो तरफ से शुरू हो जाए। और ये जो अंबिया अकेले में खड़े होकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे नमाजें पढ़ते थे, ये वन साइडेड था या टू साइडेड था? वन साइडेड नहीं हो सकता ये, तुम 3-3 घंटे 4-4 घंटे, ये टू साइडेड होता है, ये डायलॉग होता है, ये मोनोलॉग नहीं होता। हम लोग मोनोलॉग वाले नीचे से बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता ऊपर से क्या होगा, ये थोड़ा मेहनत करेंगे डायलॉग होगा तो कनेक्शन बनो। एक बात हो गई, दूसरी बात वो पॉइंट था, वो बंदा आया मेरे पास कहने का मौलाना मुझे एक सवाल करना है जल्दी से बताओ मेरी शिफ्ट है मुझे जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तभी वो बैठा भी नहीं ना ऐसी बराबर में झुका हुआ था, तो मुझसे कहने का मौलाना जल्दी से जवाब बताना ये मारिफत इमाम क्या होता है, मुझे जाना है। तो पहले मैंने सोचा इसको बोलूं कि भाई ये मारिफत इमाम छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, आप चले जाओ कल सुकून से आना। मैंने पहले ही सोचा, फिर मैंने दिमाग में कहा यार क्या पता मैं जिंदा हूं, ये जिंदा है कल नहीं आया फिर क्या होगा, अभी जो पूछ रहा है कुछ बोल दो। तो फिर मैंने खुदा से कहा खुदा है मुझे तो नहीं पता इसको मैं 1 सेकंड में क्या बोलू, मुझे कुछ सिखा था कि मैं बोलू, मेरे बस में तो नहीं है कोई चीज। अचानक मेरे जहन में जुमला आया, तो मेरे दिमाग में आया मैं इसको यही बोल देता हूँ, मैंने उसको बोल दिया, बहुत खुश हुआ, मौलाना बहुत अच्छा है, वो चला गया। जब चला गया तो मेरे दिमाग में आई भाई ये तो मेरे दिमाग में आए कहीं ऐसा नहीं शैतान ने डाल दिया, रबड़ हो गई गलत जुमला हो, इसकी बात रिव्यू करना चाहिए, बात सही कही गलत कही, फिर उसको बुलाऊंगा अगर मैंने गलत कहा है। फिर मैंने देखा नहीं बात सही, बात अच्छी है, फिर मैं आपको गया उसके ऊपर और गौर किया, देखा नहीं बात सही, बात सही है। फिर मैंने सोचा अगर ये बात इतनी सही है तो मैं भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा, तो मुझे लगा हाँ अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव चेंज आएगा मेरे। फिर मैंने उसके ऊपर कोशिश की, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस रात की बरकत में इंशाअल्लाह, अल्लाह तासीर भी डाल दे और मुझे और आपको अमल करने की सआदत भी दे दे। एक बार फिर इमाम की नजर लुत्फ को हासिल करें, इमाम सबको देखते हैं, कोई चीज इमाम से छुपी भी नहीं होती, लेकिन एक स्पेशल ब्लेसिंग होती है इमाम। जैसे आप मिसाल के तौर पर अपनी माँ के सामने हमेशा जाते हैं, आपकी माँ भी देखती है आप भी देखते हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन कभी वो माँ दुआ दे रही होती है, तो हम इसको कहते हैं नजर लुत्फ। तो इमाम सबको देखते हैं लेकिन कुछ लोगों को नजर लुत्फ से देखते हैं, तो हम चाहते हैं इंशाअल्लाह इस महफिल को इमाम आज की शब नजर लुत्फ से देखे। इमाम की नजर लुत्फ को हासिल करने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले इमाम। जुमला बहुत सा है, काम थोड़ा सा मुश्किल है, जुमला सा है। वो क्या है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले कर रखे, छोटे फैसले बड़े फैसले, मसलन मैंने अपनी जिंदगी में चंद बड़े फैसले किए, बाकी सारे फैसले उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते, उसका रिजल्ट होता है। मसलन भाई मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ आना है, तो जब मैं यहाँ पर आ गया तो नेक्स्ट जो 8 डेज 9 डेज जो यहां पर रुकूंगा वो उस फैसले का रिजल्ट है, अगर नहीं आता तो कुछ और था। तो वो जो 9 डेज है वो मेजर डिसीजन नहीं है, मेजर डिसीजन वो आने का है। तो इस तरह इंसान की लाइफ में कुछ मेजर डिसीजंस होते हैं, बड़े फैसले इंसान की जिंदगी में 5-6 से ज्यादा नहीं होते, बाकी सब कॉन्सिक्वेंसेस होते। असल मैं भी आपके सामने तालिब इल्म बन के बैठा हूँ, ये मैंने फैसला कब किया था, ये 34 years back मैंने फैसला किया जब मैं तालिब इल्म बना। 34 years में क्या हुआ उसके रिजल्ट्स हैं सारे, मेजर डिसीजन बोल आप और मैं जिंदगी में ऐसे ही। अब ये भी एक अलहदा मसला है कि हमारे फैसले सही कैसे हो, सही फैसले कैसे करे इंसान, क्योंकि हम जो कुछ भी है अपने फैसलों का रिजल्ट है, हम जो कुछ भी हैं अपने फैसलों का रिजल्ट है। गलत फैसले करेंगे रिजल्ट गलत निकलेगा। छोड़ देता हूं दोबारा जुमले पे आता हूं। तो आप अपनी जिंदगी में फैसले करते हैं, कुछ बड़े फैसले करते हैं जिंदगी में 4-5, कुछ छोटे छोटे फैसले करते हैं, मसलन आप एक फैसला करेंगे आज रात सोना कितने बजे, फिर सुबह को उठना कितने बजे, फैसले कितने बजे खाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, सब फैसले। तो आप एक काम करें अल्लाह मदद ले, जब भी कोई फैसला करें चाहे छोटा चाहे बड़ा, अपने आप से एक बात पूछेगा, इस काम से इमाम खुश होंगे, जब भी कोई फैसला करने लो छोटा फैसला या बड़ा फैसला। मसलन छोटा फैसला क्या, कितने बजे सोना है, पूछो अपने इमाम से कितने बजे सोऊं तो इमाम खुश होंगे। और क्या फैसला है, मतलब अभी सब लोग जाएंगे, ज्यादातर लोगों को एक आदत है जैसे वो घर जाते हैं टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन करेंगे देखना शुरू करेंगे, अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, ये जो मैं देखूंगा इससे इमाम खुश होंगे। अगर आपका जहन दिल, अरबी में हम कहते हैं खल, और खल की हर्ट नहीं है, पंपिंग स्टेशन फल नहीं होता, फल कुछ और हो, कल मैंने इशारा किया फल कुछ और, आप अपने दिल से पूछें इमाम खुश होंगे, और आपका दिल कहे हाँ इमाम बहुत खुश होंगे, करो जरूर करो, क्योंकि आपने करके अपने इमाम को खुश कर लिया। और इमाम कौन है, वो है जिससे अल्लाह की सारी बरकतें उसके वसीले से नाजिल हो रही। अच्छा, अगर आपका दिल ये कहे इस काम से इमाम खुश नहीं होंगे, अब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इसको इतनी सादगी से नहीं जाने दूंगा, मैं एक और बात सोचता हूं, एक मिसाल देता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, फर्ज करो मैं आज रात सोते भी देर हो गई, 2 बजे सोया, फजर की नमाज 5 बजे फर्ज कर लेते, अभी मैं 2 बजे सोऊं और 5 बजे दोबारा उठूं तो 3 घंटे सोया, सही तो मेरी नींद डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब अगर मैंने अपने आप से पूछा भाई इमाम कितने बजे पसंद करेंगे, तो मसलन कम से कम फजर की नमाज तो पढ़ूंगा, तो इमाम पसंद करेंगे कि भाई मैं उठूं चाहे मुझे सोते हुए 3 घंटे हुए हों। अच्छा, मेरा नफ्स क्या कहेगा मुझे, तो भाई 3 घंटे की नींद तो बहुत कम होती है, अभी ज्यादा सोना चाहिए, सही। अच्छा, अब मेरा जहन क्या कह रहा है, मेरा नफ्स क्या कह रहा है, मेरा नफ्स ही कह रहा है कि अगर मैं उठ गया तो मैं थक जाऊंगा तो मुझे सोता रहना चाहिए, मेरा नफ्स ये कहेगा, तो मुझे अपने आप से एक बार पूछनी पड़ेगी, अगर मैं सोता रहा अपने जिस्म की खातिर तो इमाम खुश होंगे या नहीं होंगे, नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूं इमाम खुश नहीं होंगे। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, जिस्म की थकावट देखूं या इमाम की खुशी देखूं, क्या देखूं। अच्छा, अब दोनों पे काम कर देते हैं। अच्छा, अगर मैंने इमाम को खुश कर लिया तो मेरी जिस्म की थकावट का क्या होगा, और अगर मैंने जिस्म को सही कर लिया फ्रेश कर लिया और इमाम नाराज हुए तो क्या हो। मैं अपने आप से एक बात पूछूंगा कि भाई जो अल्लाह ने इमाम बनाया है, ये मेरी जिस्म की थकावट का इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता, लेगा कहीं और से कर देगा। लेकिन अगर मैंने इमाम को नाराज कर दिया तो मेरे जिस्म को आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इमाम को नाराज करके कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय घाटे के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको और मुझे ये यकीन हो गया कि इमाम को नाराज करके कुछ नहीं मिलता है, तो हम जिस्म की खातिर इमाम को नाराज नहीं करेंगे। मसलन मैं टेलीविजन के ऊपर एक चीज देख रहा हूं, नाउज़ुबिल्लाह चीज अच्छी नहीं है, अभी मेरा दिल कह रहा है मैं देखूंगा ना तो बड़ा मजा आएगा, और मेरा दूसरी तरफ से जहीर ये कह रहा है कि बेटा तुम्हें तो शायद मजा आएगा लेकिन इमाम खुश नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैंने अपने मजे की खातिर इमाम को नाराज किया तो मुझे मजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं गारंटी से कह रहा हूं ये मजा नहीं होगा, ये धोखा होगा, इसके पीछे बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। क्यों? कायनात किसके हाथ में है? निजाम किसके हाथ में? निजाम इमाम के हाथ में है। इमाम को नाराज करके खुशी मिल सकती है? नहीं मिलती। तो मुमकिन है मुझसे कोई कहे मौलाना हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो रात को बड़े मजे से सो जाते हैं, सुबह को नमाज भी कजा कर देते हैं और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। जिंदगी के आखिर तक देखते रहोगे? चलो जिंदगी के आखिर तक भी देख लोगे, जिंदगी के बाद कभी देखोगे? क्या खुदा ने हमें सिर्फ यहां रहने के लिए पैदा किया? क्या यहां के बाद कुछ नहीं है? तो अल्लामा तबारकुल्लाह बड़ा अजीब एक जुमला बोलते थे, वो कहते थे खुदा ने हमें फना के लिए खल्क नहीं किया है, बका के लिए खल्क किया, हम बाकी रहेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे और जगहों पर बाकी रहेंगे। तो तुमने जिन लोगों को इमाम को नाराज करके जिंदगी में मजे लेते देखा है, कितने मजे लेते देखा है, कहां तक देखा है? इस दुनिया से अलग नहीं देखा, तो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर, अपनी लाइफ में मात्र कुछ करो। और अगर आपने और मैंने ये करना शुरू कर दिया, कसम खाना अच्छी बात नहीं, मकरूह हो जाती है, चाहे बात आपकी ना हो, लेकिन आप अपने जहन से सवाल करना, अगर मैंने अपने इमाम को खुश करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? समझ लो दुनिया कुछ और होगी, अब दुनिया कुछ और है। क्यों? तुमने उसको खुश कर दिया जिसके हाथ में सब कुछ है, उसके पास सब कुछ। अब आपके जहन में जितना भी अपने इमाम के बारे में अकीदा है उसको जरा सामने लिखा और अपने आप से सवाल करो, वो कौन सी बदबख्त जगह है जहां पर मैं, जिसकी खातिर मैं अपने इमाम को नाराज कर रहा हूं, वो कौन सी जगह, उसको सही करो। क्यों? उन जगहों से बदबख्ती आएगी। और ये जो हमारे सामने मुसीबत है ना कि बहुत सारी चीजें हम सारी जिंदगी लगा देते हैं नहीं मिलती हमें, एक हो जाएगी, कोशिश करते हैं और वो जो मेन जगह थी कोशिश करने की, जो इमामत का मामला था, वहां मेहनत नहीं कर रहे। तो दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं और कोई इमामत के लिए मेहनत नहीं कर रहे, भाई सब कुछ वहां पर है। अभी मैं और आप देखो वाकया करबला को दोहराते हैं, करबला के वाकों को, कि किसी ने ऐसी कुर्बानी दी, उसने सारी दुनिया कुर्बान कर दी इमाम हुसैन के लिए, मिला उसको या नहीं मिला? सब कुछ मिल गया। तो यही मामला इस वक्त भी है। एक बात और अर्ज करूं आपकी खिदमत में, इख्तिताम पे लेके जाऊं, ये जो हम लोगों की जिंदगी है ना, हम लोगों की करबला यही हो रही है, हम लोग एक से डिजन में वापस भी जाएंगे। यही जो कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में, इससे तय होगा हम हुसैनी हैं या नहीं, इससे तय होगा हम इमामत के रास्ते पर हैं या नहीं। अभी क्या अज्यूम करते दोबारा मेरे और तुम्हारे सामने यजीद इब्न मुआविया खड़े होकर कहेगा बैत कर मेरे हाथ पर? नहीं, ये मेरे सामने नहीं हो रहा। तो ये क्या हो रहा है फिर? वो यजीदी हुसैनी कहां गया मामला? ये चल रहा है अभी भी, ये मेरी और आपकी जिंदगी में अभी भी चल रहा है, हम रियलाइज नहीं कर रहे, हम इसको देख नहीं रहे, मुश्किल हमारे साथ की, वरना ये अभी भी चल रहा है। मसलन क्या चल रहा है? यही तो अपनी जिंदगी में हम फैसले कर रहे हैं। अपने आपसे सवाल करूं, भाई जो मैंने फैसला किया ये हुसैनी फैसला है, कौन सा फैसला है? امام حسین جی کہہ رہے ہیں, وقت کا امام جی کہہ رہے ہیں. بس ایک بات اور ختم کرو, ایک بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے. جہاں کہیں امام کی تشریف آوری کی بات ہوتی ہے, یہ روایت آتی ہے, اللہ کے رسول سے بھی منقول ہے, انتھار سے بھی منقول ہے. فرمایا کہ یملا الارض قسطاً وعدلا کما مل عدل من وجاؤ گا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں امام کے معاملے میں؟ میں نے آپ سے پہلی بار کی گئی چند منٹ خدا سے ڈائلگ, پہلی بار. دوسری بات آپ سے یہ کہی کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کم سے کم ناراض مت کرو. کچھ نہیں کر سکتے نا تو ناراض مت کرو. دو باتیں, ایک تیسری بات, جب وہ آئیں گے تو ظلم سے لڑیں گے, ظالم سے لڑیں گے, تو پھر ایک کام کر دو, کچھ کوشش کرو کہ میں اور تم ظالم نہ کریں, ہم کوئی ظلم نہ کریں. کیوں؟ امام ظالموں سے لڑنے آ رہا ہے, ہم لوگ ظالم نہ بنیں. کس معاملے میں؟ کوئی بھی معاملہ زندگی کا ایسا نہ ہو جس میں ہم نے ظلم کیا. کیوں؟ امام ظلم سے لڑنے آ رہا ہے. آپ اور میں ظالموں کی لائن میں نہ آئیں بس. تو مثال کے طور پر اولاد کے معاملے میں, فیملی کے معاملے میں, دنیا کے مظلوموں کے معاملے میں, پوری دنیا ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں ان سب کے معاملے میں میں اور تم ظالم نہ بن جائیں. مثال کے طور پر میں فرض کرو ایسی میں کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, تو میرا چھوٹا سا کام کاج ہے پاکستان کے اندر, وہاں میرے پاس کچھ امپلائیز ہیں, کسی کا کوئی پیسہ میرے ہاتھ میں رہ گیا تو میں نے ظلم کیا نا, اور امام کس سے لڑنے آ گئے, تو بھائی میں ظالم نہ بن جاؤں گی. تم امام کا ساتھ نہیں دے سکے, چھوڑ دو فرض کرو. ابھی بتاؤ ظالم تو نہیں ہو کہیں؟ کیوں؟ امام ظالموں سے لڑنے آ رہے, امام مظلوموں کا ساتھ دینے آ رہے. یم لاؤلا ارزا کستن بعد کما بولے اب گلمن کو جاؤ. اس روایت میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں, 100% کنفرم ہے. تو احسان محترم تین ریسپانسبلٹیز مجھے فوراً سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ون, اللہ کے ساتھ کنیکشن, اور میں نے بتایا کہ کنیکشن نماز میں بھی ہو سکتا ہے, نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اللہ سے گفتگو کریں, کیونکہ ہم لوگ بعض اوقات نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور خدا سے کنیکشن نہیں بناتے, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں کنیکشن نہیں بناتے, دعائیں پڑھ لیتے ہیں کنیکشن نہیں بناتے. پہلی بات اللہ سے کنیکشن, دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ بھائی جو فیصلے کرو وہ امام خوش کرو, امام کو ناراض کرنے والا کوئی فیصلہ نہیں کرو, چاہے چھوٹا چاہے بڑا. اس کا راستہ کیا ہے؟ جب بھی فیصلہ کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو اس سے امام خوش ہوں گے, ہوں گے تو کروں ورنہ نہیں کروں. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی ظالم مت بنو, بہتر تو یہ کہ مظلوم کا ساتھ دو. کس مظلوم کا ساتھ دوں؟ مسلمان کا, مسلمان سب امام نے جو وصیتیں فرمائی ہیں مولا میں لمبی کہانی میں سنی شروع کروں گا, اسے وصیت دوران ظالم کے دشمن بن جاؤ, مظلوم کے مددگار بنو. میری اسپیشلائزیشن اکیڈیمکس میں دو میں, ایک اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہے, اسپیشلائزیشن تو نہیں جو میں نے کیا, دوسری پولیٹیکل سائنسز میں, ایم فل پولیٹیکل سائنسز میں. پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے نیوٹرلٹی, نیوٹرل. میں کہتا ہوں کہ امامت کی لینگویج میں, ٹرمینالوجی میں نیوٹرلزم نہیں ہے, نیوٹرل نہیں ہوتا کوئی بندہ. کیوں؟ یا حق کے ساتھ ہے یا حق کے خلاف ہے. کیوں؟ امام نے کہا کونا للظالم خصمن, ظالم کے دشمن بنو. امام نے نہیں کہا ظالم کا ساتھ نہیں دینا. جو کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں, نہ میں نے ظالم کا ساتھ دیا نہ میں نے مظلوم کا ساتھ دیا, امام فرمایا نہیں یہ کوئی راستہ, کونا للظالم خصمن, ظالم کے دشمن بنو. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں آپ سے, خصم دشمن ہوتا ہے. کونا للظالم خصمن, مثلا ایک آدمی مجھ سے کہ مولانا میں افریقہ کے ایک آئی لینڈ میں بیٹھا ہوں, مجھے دنیا کے کسی ظالم سے کوئی سروکار نہیں, دنیا کے کسی مظلوم سے کوئی سروکار نہیں, میرا پام ٹری لگ رہا ہوا ہے, اس سے میں توڑتا ہوں, میں اس سے کھانا ختم ہوگی. میں کہوں گا بھائی یہ اہل بیت کی وکیبلری یہ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے قبول نہیں کیا یہ نیوٹرلزم ٹائپ کی چیز. انہوں نے کیا کہا؟ کونا للظالم خصمن. کسی کو ڈاؤٹ ہے تو نہیں بلا بک دیکھ لیں. وللمظلوم اعونا, ظالم کے دشمن مظلوم کے دوست. تو میں کہوں میں نے مظلوم پہ ظلم نہیں کیا, امام نے یہ نہیں کہا, امام کا اس کا دوست بنوں, مددگار بنوں. تو میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات چیک کرتا ہوں, میں ظالم تو نہیں, کسی مظلوم کا میں نے ساتھ دیا یا نہیں دیا, میں چیک کروں گا اپنی زندگی. ظالم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ دشمنی کا. میں ظالم کو یہ نہیں کہوں گا بھائی میں آپ سے کوئی سروکار نہیں, آپ جو کرنا کرتے ہو, نہیں یہ میرا رشتہ, یہ نہیں میرا اس کا رشتہ کیا, میں اس کا رشتہ دشمنی کا. میں ظالم کو ظلم نہیں کرنے دوں گا جب تک میرے اندر طاقت ہے. مظلوم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ نہیں ہے, دیکھ مظلوم میں نے تیرے روپے کوئی ظلم نہیں کیا, نہیں یہ رشتہ صحیح نہیں. مظلوم سے کیا رشتہ ہے؟ مظلوم سے رشتہ مددگار ہوں, اس کو بولو میں تیرے ساتھ. یہ عامر مومنین نے فرمایا. تو ان شاء اللہ ان تین پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو انجام دیں گے. زمانہ بہت اچھا زمانہ, ٹف ہے, ٹربل بہت زیادہ ہے, امتحان سخت ہے, انعام بہت اچھا ہے, انعام بہت اچھا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنے لیے بہت بڑے بڑے انعام مانگتے ہیں. ہمت چاہیے سر, آپ اپنی ہمت بناؤ کہ مجھے اپنے امام کے لیے کام کرنا ہے, تو پھر خدا آپ کو سارے موقع دے گا. میں قوم میں تھا تو ہمارے ساتھ ساتھ رہنے والوں میں مدرسے میں ایک لڑکا تھا فرینچ, تو بھی چونکہ آپ لوگ فرینچ زیادہ بولتے تو شاید آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے سن لو. وہ فرینچ لڑکا تھا, پیرس میں رہتا تھا, اس کی ماں عیسائی تھی کرسچن, باپ جو تھا وہ مسلمان تھا, لیکن مسلمان جو تھا وہ وہی والا مسلمان تھا جو ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے مرتا ہے بس. وہ تو یہ سب اس نے لائف کرسچینٹی میں گزاری تھی. ایک کالج میں تھا تو ایک ایونٹ ہوا, اس کی وجہ سے اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ایران میں کچھ ہوا ہے. وہ دن لمبی کہانی میں اس لوگوں نے مجھے سنائی, میں ساتھ ہی اتر, تو اس کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ ایران میں کچھ چیز صحیح ہو گئی ہے شاید, کیونکہ پوری دنیا کے لوگ اس کے خلاف ہوئے, اس کا مطلب ہے یہاں کچھ صحیح ہو گیا. تو گیا اس نے معلوم کیا بھائی ایران میں کون لوگ ہیں, لوگوں کو بتایا بھائی مسلمان ہیں. اچھا اسے بےچارے کو کچھ پتا نہیں تھا مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے, تو اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, تو وہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ کہانی کیا ہے. وہ ایک مسجد میں جاتا تھا, وہاں اس نے کہیں ایران کی بات کر دی, تو وہ جو لوگ تھے وہ سارے وہ اپنے بڑے بھائی لوگ تھے. وہ انہوں نے اس کو خوب سنایا کہ تم غلط انسان ہو, تم نے کیا سیکھا ہے, تم نے مسلمان تو یہ وہ تو ہے ہی نہیں, وہ لوگ غلط ہیں. اس نے کہا بھائی ان کو دیکھ کے میں مسلمان ہوا تھا, اس کا مطلب تم بھی غلط. ماں سے کر لیا وہ نکلا. اس کے بعد میں پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, کوئی ان کے خلاف کیوں ہوا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا بھائی کوئی ایک اور سیکٹ ہے, یہ ایک اور سیکٹ ہے. وہ ہمارے سعودی عرب کے فنڈڈ تھے وہ بھائی لوگ جو کوئی بھی تھے. تو یہ ہو گیا, الحمد للہ اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا. اس کے بعد یہ گھومتا رہا کہ میں کیا کروں زندگی کے اندر, تو اس نے کہا بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر اہل بیت کی خدمت کروں. تو یہ بڑی مصیبتوں سے جھیل جھال کے یہ قم آ گیا, طالب علم بن گیا. قم میں طالب علم ہو گیا, ہمیں میں سے اجتیا میں رہتا تھا ساتھ ہی, تو میری بھی اس کے ساتھ کہیں دوستی وستی ہو گئی. ایسا بڑا عجیب ٹرن ہے اس کی لائف پر. 87 میں 88 میں جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی, تو اس زمانے میں ایک بہت سخت حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر. یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے فرنٹ پہ چلا گیا, وہاں بھی شہید ہو گیا. اس کی قبر قم میں, میں ابھی پچھلے مہینے ایران گیا تھا تو اسی قبر پہ فاتحہ پڑھنے گیا تھا. میں سوچ رہا تھا یا الہی, پیرس میں کرسچن لڑکا اور دونوں اٹھا کے کہاں پہنچا دیا اس کو, قوم میں بہشت زہرا دفن کروا دیا, اور اب یہ کیا شہید ہو, کیا ٹائٹل ہے اس کا, شہید. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آج کے زمانے میں ویکینسیز اوپن ہیں, کسی کو اپلائی کرنا ہے تو کر لیں. آج کے زمانہ بہت اچھا زمانہ, تو سب چیپٹرز کھلے ہوئے ہیں, جس نے جہاں پہنچنا ہے پہنچ جائے, بس ہمت دکھو, ہمت دکھو اپنے کام پہ. یہ جو آپ اعمال ابھی انجام دیں گے نا, یہ کوئی میجیکل اسپیل نہیں ہے, یہ سب کنیکشن کے لیے. جتنے بھی اعمال آپ ابھی آپ کریں گے, یہ سب کنیکشن کے لیے. آپ میں کنیکشن بنا, باقی امام سے کنیکشن بنا, اور امام سے کہیں مولا میرا ہاتھ پکڑ لیا, मुझे कहीं ले चले, क्यों मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगा, मैं अपने डिसीजन सही नहीं ले सकता, आप मेरे सही फैसले करवा और मुझे उधर पहुंचा दें जहां पर आप खुश हैं।